नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं चंपारण मोबाइल वाणी और घोड़ा सहन से मैं हूं राजू सिंह। आज हम आए हैं बिहार विश्वविद्यालय छात्र नेता मधुसूदन जी के साथ और इस पर आज हम चर्चा करेंगे क्वारंटाइन सेंटर, प्रवासी मजदूर, मनरेगा जॉब कार्ड आदि से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार मधुसूदन जी।
नमस्कार सर।
मधुसूदन जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार में काफी मजदूर जो हैं, प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं और अभी तो खैर क्वारंटाइन की व्यवस्था भी बंद हो गई है, उनको जॉब के लिए ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके, क्योंकि वे बाहर रहते थे और लॉकडाउन में वहां की जो भी फैक्ट्रियां हैं, व्यवसाय हैं, सभी बंद हो चुके हैं और फिलहाल उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि वे जॉब छोड़कर आ चुके हैं और यहां अपने गांव में, पंचायत में उस तरह का कोई जॉब है नहीं। तो एक तो आ रहा है मनरेगा, जिसमें उनको देना है जॉब जो है, तो अभी फिलहाल किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है उनको लेकर के मनरेगा में, थोड़ा सा इस पर बताइए।
देखिए, जो परिस्थिति है वर्तमान समय में देश की, 2009 से ही रोजगार का जो संख्या है पैदा करने का, वह घटते आ रहा है और मोदी सरकार जब से आई है 2014 से, तब से निश्चित रूप से और भी ज्यादा रोजगार का अवसर समाप्त कर दिया गया है। और इसी वक्त में लॉकडाउन भी हुई, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आ गई और इस महामारी में करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार होकर के अपने घर लौट रहे हैं। सरकार ने पहले ही जो गरीब लोग हैं ग्रामीण इलाकों में, उनको वर्ष में 100 दिन रोजगार देने का कानून बना हुआ है इस देश में, लेकिन वह कानून भी धरातल पर लागू नहीं होता नजर आता रहा है। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है, इस कानून को स्ट्रिक्ट रूप से हर तरह से धरातल पर लागू हो, लोगों को 100 नहीं, उसको अब बढ़ा करके मेरे समझ से वर्ष में 200 दिन रोजगार देने का कानून सरकार को बनानी चाहिए कि देश के जो गरीब तबका के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, श्रमिक वर्ग के लोग हैं, उनको रोजगार मिले, वे काम करें और उसके एवज में उनको कुछ पैसे हो। सरकार की एक और नीति हम देखते आ रहे हैं कि उनको रोजगार तो मिलती है, लेकिन रोजगार लेने के उपरांत उनका जो वेतन का जो बात होता है, वेतन भुगतान का, वह भुगतान नहीं हो पाता है। वेतन भुगतान सरकार कहती है कि हम आपके अकाउंट में, खाता में करेंगे, लेकिन इसमें काफी देरी लगती है। हम तो देखते हैं कि आज काम किए और उसकी मजदूरी आते आते 6-6 मंथ लग जाते हैं, लेकिन जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनको, हम जिस विचारधारा से आते हैं, वामपंथी विचारधारा से, कार्ल मार्क्स कह गए हैं कि मजदूरों का काम यदि करता है तो उसके तादाद में, उसके एवज में उसकी पसेना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे दी जानी चाहिए। लेकिन यह सरकार श्रमिक विरोधी है, लोगों को मजदूरी देने में काफी लेट कर रही है और मुझे लगता है तकरीबन 158 रुपया वेतन उनका तय किया है, श्रम का जो मूल्य है, जो सरासर गलत है। हम देखे थे पिछले साल सभी लोगों का वेतन बढ़ा और श्रमिकों की जब वेतन बढ़ाने की बात हुई तो इस देश के सांसद ने मात्र 1 रुपया उनका श्रम का बढ़ाने का काम किया, जो एकदम ही उजागर करता है कि यह सरकार श्रमिक विरोधी है, गरीब विरोधी है। दूसरी तरफ कोरोना महामारी से जितने लोग इस देश में नहीं मर रहे हैं उसके समानांतर इस देश के गरीब भूख से मरने लगे हैं। सरकार लोगों को खाना तक देने में असक्षम साबित हुई है। लोग मर रहे हैं लेकिन यह सरकार उनको भोजन तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। शिक्षा चौपट हो गई है, स्वास्थ्य चौपट हो गया। हाल ही में आप देखे होंगे एक व्यक्ति हमारे घोड़ासहन में ही बेहोश पड़ा हुआ था, उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। सिविल सर्जन से हमारी बात भी हुई थी, वे कह रहे हैं कि लापरवाही एम्बुलेंस चालक की है, उनको नहीं जमा कराई गई। हम पूछना चाहते हैं इस देश की प्रदेश की सरकार से, सिविल सर्जन से, यदि वे नहीं जमा कराया तो क्या आपके अस्पताल में कोई कर्मी उसको नहीं देख रहा था? क्या वहां कोई प्रशासन नहीं है? लोग अस्पताल में मर रहे होंगे, घुट घुट करके मरेंगे, और आप क्या उनको अच्छी इलाज भी नहीं कर सकते हैं?
उनको बात आ रही है, जैसे कि नगर इंस्पेक्टर ये बता रहे हैं कि जैसे कि मरने के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा थाने को सूचना दी गई।
जी जी।
अगर ऐसी सूचना पहले दी जाती तो अस्पताल प्रबंधन अगर उठाकर उसको इलाज करने का व्यवस्था करता तो शायद वो बच जाती।
जी जी, बिल्कुल। देखिए, मैंने इस देश की नीति रही है, पुलिस को एक तो बुलाया नहीं जाता है जल्दी, यदि बुलाया भी जाए तो लेट से पहुंचेगी। क्या अस्पताल प्रबंधक उसको पहले 15 घंटों से तो देख ही रही होगी ना? निश्चित रूप से वहां की जो व्यवस्था है घोर लापरवाही वाली व्यवस्था है, और उन सभी लोगों पर आपके माध्यम से हम कार्रवाई की मांग करते हैं।
चलिए, बहुत अच्छा। जो है स्वास्थ्य महकमे में लापरवाही, जैसा कि आपने सुना, प्रवासी मजदूर बाहर से लौटकर आ रहे हैं और खाने के अभाव में कहीं बेहोश हो जा रहे हैं, और उनको अस्पताल तो पहुंचाया जा रहा है परंतु इलाज के अभाव में या लापरवाही से उनकी मौत भी हो रही है। तो इस पर मोबाइल वाणी के माध्यम से मधुसूदन जी इन खबरों के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात है, जैसे अभी आ रहा है सूचना जो मिल रही है कि बहुत सारे ऐसे लेबर हैं जो काम कर रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, या काम नहीं कर रहे हैं भी पैसे आ रहे हैं, और उनके पैसे बगैर उनके उपस्थिति के निकल जा रहे हैं, क्या मतलब किस टाइप का जो है और इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, हम समझते हैं कि लोग बहुत ज्यादा ठगे जाते हैं, शोषित हो जाते हैं। इस परिस्थिति में भी जहां पर गरीब लोग मर रहे हैं, उस परिस्थिति में भी उनके श्रम का पैसा यदि कोई निकाल रहा है तो हम तो समझते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लोग करते क्या है निचली स्तर पर कि थोड़ा बहुत उसमें साझेदारी जनप्रतिनिधियों की भी होती रही है, लोग उनको मजदूर को बुलाएंगे चेक करने के लिए कि दीजिए आपको चेक कर देते हैं, खाता चेक कर देते हैं, या बोल देंगे आपको रोजगार दिया जाएगा। इस तरह करके उनका अंगूठा ले करके मशीन पर उनके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है। तो लगातार उनकी शोषण हो रही है, और शोषण होने में भूमिका सरकार की ही रहती है। सरकार यदि चाहे तो किसी भी मजदूर की गरीब का शोषण इस देश में नहीं होगा। सरकार की मंशा ही नहीं है कि इस देश के गरीब लोग, मजदूर जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, वे सही ढंग से जिए। सरकार लगातार पूंजीपतियों के पक्ष में कानून बनाते जा रही है। आज ही हम एक डेटा देख रहे हैं, तमाम सरकारी कंपनियां लगाता है, और जब से भाजपा की सरकार है, चाहे अटल बिहारी की सरकार हो वाजपेयी जी की, या इसके पहले थोड़ा दिन मनमोहन जी की सरकार हो, अटल बिहारी जी की सरकार में 7 कंपनियों को जो सरकारी था उसको बेच दिया गया। कांग्रेस की मनमोहन जी की सरकार में 3 सरकारी कंपनी को बेचा गया था, और अभी मोदी जी ने तो हद कर दिया, 23 सरकारी कंपनी बेच दी है। तो ये सरकार देश को बेचने में लगा है, और बेच करके ही मानेगा हमको लगता है, जब तक जनता इसको नहीं रोकेगी। और जनता को भी समझनी चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
चलिए, बहुत अच्छा समस्या आपने उजागर किया है। और एक चीज और देखिए, सरकार एक और जहां ये कह रही है कि हम कंपनियां लगाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, विदेशों में से कुछ कंपनियां जो है देश के विभिन्न हिस्सों बिहार अगर अगर में आ रही है। एक हम छोटा सा बात कहना चाहेंगे, जैसे यहां बहुत सारी चीनी मिलें हैं, अपने बिहार में भी है, अन्य जगहों पे भी है। आप जहां से हैं, पूर्वी चंपारण जिले को ही ले ले, यहां की मोतिहारी चीनी मिल, सुगौली चीनी मिल बंद हो चुकी है। जब सरकार इसको चालू नहीं कर पा रही है तो क्या कंपनियों को लाकर क्या करेगी, किस तरह से मतलब ये करेगी?
देखिए, हम लोगों को पिछले साल बहुत बढ़िया एक अवसर मिला था, हमारे ही संसदीय क्षेत्र मोतिहारी में राधा मोहन जी को देश का कृषि मंत्री बना दिया गया। हम लोगों की बहुत खुशी हुई थी, वही हमारे चंपारण के लोग देश का कृषि मंत्री बना है, हम लोगों का जरूर जो है बेड़ा पार होगा और देश की में एक चंपारण की एक अलग पहचान बनेगी, और इस उम्मीद पर हम लोग टिके हुए थे। लेकिन जब ही कृषि मंत्री के समक्ष एक चीनी मिल का मुद्दा उठाया गया, मोतिहारी चीनी मिल को चालू करने को लेकर के, तो पता चला कि चीनी मिल का सारा जमीन राधा मोहन जी अपने लोगों का नाम लिखवा रखे हैं।
अच्छा।
अपने पहचान के लोगों को नाम लिखवा रखे थे, बाद में कुछ लौटाने की जब बारी आई तब वो अडानी ग्रुप से बेच दिया, वो जो हिंदुस्तान अखबार चलाता है वो। इसके खिलाफ में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, वहां मजदूर आत्महत्या तक कर लिया दो मजदूर, और हिंदुस्तान अखबार में दो दो लाइन का खबर छपता था, यानी बहुत ही शर्मनाक उसकी वहां पर पहचान थी। इस मामले को लेकर के पूरे देश में एक बढ़िया आंदोलन खड़ा हुआ, मजदूर के हित में आवाज उठने लगी थी, लेकिन उस आवाज को इस सरकार के द्वारा दबा दिया गया। और उस आंदोलन के एवज में कई नेता भी उभरे थे, वे नेता आजकल देख रहे हैं कि भाजपा के ही चाकरी में लगे हुए हैं, कई लोगों के नाम तो रखना उचित नहीं होगा, लेकिन उसमें ठगे कौन गए, यदि इसको देखिएगा तो ठगे गए मजदूर, जिसका 17,000 करोड़ का उसकी मजदूरी बाकी रह गई थी, उसमें ठगे गए किसान, 60,000 करोड़ का ऊख जो है वो ले लिया था और अब तक उनकी भुगतान नहीं हो पाया। मोतिहारी के इलाकों में जहां पर नदी का इलाका है मोतिहारी के आसपास में, हम कल ही परसों घूमने गए थे उधर, उधर केवल ऊख की खेती होती है, थोड़ी बहुत मक्का की खेती। लोग ऊख के बारे में सोचते हैं, दिन रात ऊख में लगे रहते हैं, लेकिन खेती कीजिएगा और खरीदार नहीं होगा तो स्वाभाविक है रेट गिर जाता है, और जहां पर दूसरी चीज की खेती हो ही नहीं पाएगी और खरीदार भी कम है तो वहां निश्चित रूप से रेट गिर जाता है, किसान भुखमरी के शिकार हो जाते हैं, आत्महत्या को मजबूर हो जाते हैं। इस सरकार यदि हम समझते हैं कि डूब मरना चाहिए राधा मोहन सिंह को, केंद्रीय कृषि मंत्री होते हुए भी वे किसानों की जो समस्या है इस समस्या से उनको निजात नहीं दिलवा पाए, हम समझते हैं कि यह सरकार किसान विरोधी है और इस सरकार को अब इस देश से जाना ही होगा।
चलिए, अब एक आखिरी मतलब आपसे जो है ये है, क्योंकि आप छात्र से जुड़े हुए हैं, छात्र नेता हैं, और अभी लॉकडाउन की स्थिति है, और ऐसे में एक आवाज आ रही है छात्रों की ओर से, जो छात्र पटना रहकर या कहीं रहकर पढ़ते हैं, किराया को लेकर जो बात आ रही है,
जी जी,
इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, आज ही आयशा और देश के लगभग 60 छात्र संगठनों ने हम लोग एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया है, सभी छात्र संगठनों ने मिलकर के। आज ही आपने अच्छा याद दिलाया मुझे, आज ही हम लोग पूरे देश में आंदोलन किए हैं कि जो किराया बकाया है मकान मालिक का, छात्र रह नहीं रहे हैं, उनके साथ समस्या है, तो हम मांग किए हैं हम सभी छात्र संगठनों ने इस देश की सरकार से कि जो किराया है वह मकान मालिक सरकार का जो है, सरकार मकान मालिक को पे करे, हम लोगों की मांग रही है। और चूंकि छात्रों के ऊपर काफी बोझ पहले से ही रहा है, सभी छात्र अपने परिवार पर निर्भर रहते हैं और परिवार को इस समय तो आय का स्रोत है नहीं, तो हम लोग की मांग छात्र हित में यही रही है कि सरकार किराया के भुगतान करे, क्योंकि बहुत सारे जो मकान मालिक हैं शहर में वे किराया से ही जीते हैं, और यदि छात्र नहीं देगा तो हम लोगों ने छात्रों के हित में भी और मकान मालिक के हित को भी सोचते हुए देखते हुए कि वे भी भूखे नहीं मर जाए,
मतलब हम लोग को भी नहीं देना पड़े।
हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग मांग किए कि सरकार उसको पे करे।
चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मधुसूदन जी समय देने के लिए। चलिए।